सेल्फ रियलाइजेशन, इसमें आपको स्वयं की पहचान के साथ साथ कैसे स्वयं को सशक्तिकरण करें, अर्थात मनोबल को बढ़ाएं, आत्मविश्वास को जगाएं और सेल्फ एम्पावरमेंट करें ताकि हम अपनी पुरानी आदतों से छुटकरा पाएं, हम जो चाहें सो कर सकते हैं। हम सभी अभी कमजोर हो चुके हैं, हमारी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है, इसलिए हम जो चाहे नहीं कर सकते हैं। आदमी जो चाहता है नहीं कर पाता है, जो नहीं चाहता है वो हो जाता है। इसका मूल कारण है हमारे अंदर आत्मिक शक्ति की कमी। तो जब तक सेल्फ एम्पावरमेंट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आएगा। और डायबिटीज में बहुत सारी बातें आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, आपकी आदतों को बदलना पड़ेगा। जब वो आदतों को नहीं बदलेंगे, आपका शुगर दुनिया में कोई भी उतर के आ जाए नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आज का जो विषय वस्तु हम चर्चा करेंगे वो है सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि बिना सेल्फ रियलाइजेशन आपके अंदर सेल्फ एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, आप सुनिए। तो चलिए चर्चा करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वास्तव में विज्ञान लोग उसे मानते हैं जो कोई लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट किया जाता है कोई भी भौतिक चीज को लेकर, परंतु स्वयं को रियलाइज करना ये भी एक प्रकार का विज्ञान है। वास्तव में विज्ञान किसे कहा जाता है, विज्ञान किसे कहा जाता है, एनीबॉडी, कोई साइंस फैकल्टी के हो तो? साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ट्रुथ, सत्य का धारावाहिक पठन ही विज्ञान है। और सबसे हाईएस्ट ट्रुथ कौन है, भगवान को कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य है जगत मिथ्या है। तो सबसे हाईएस्ट ट्रुथ तो भगवान है, आत्मा परमात्मा, इसका ही ज्ञान वास्तव में सत्य ज्ञान है और इसका ही अध्ययन का नाम वास्तव में विज्ञान होना चाहिए। परंतु आज वैज्ञानिक लोग कई बातें आत्मा परमात्मा को मानते नहीं है क्योंकि ये अभौतिक है। विज्ञान जो हमारी दुनिया में जो हम देखते हैं ये मैटेरियलिस्टिक चीजों को लेके एक्सपेरिमेंट करता रहता है, परंतु आत्मा परमात्मा ये सब मेटाफिजिकल है, अभौतिक है, इसको अनुभव करने की बात है। तो आज सुनेंगे द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वास्तव में योर शॉर्टकट टू ए हैप्पियर फुलफिल्ड एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ, जीवन में सदाकाल के लिए कैसे बहुत सरल और सहज उपाय में आप कैसे बहुत सुंदर जीवन, तनाव मुक्त जीवन जिएंगे, यही एक ही रास्ता है। डॉक्टर्स के पास कोई दवाई नहीं है, आपको तनाव है टेंशन है तो गोली दे देंगे, खा के सोते रहेंगे, जब जागेंगे फिर ज्यों को त्यों। इसलिए अगर सचमुच जीवन में ठीक रहना है तो चलिए सुनते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन किया है। कभी आप जीवन में अपने आप को पूछे हो कि मैं कौन हूं, पूछे हैं कभी? कोई नहीं पूछता होगा क्योंकि हम सभी को पता है कि हम कौन है, हम जानते हैं हम कौन है। मुझे कोई पूछता है तो मैं कहूंगा मैं आई एम ए डॉक्टर, लेकिन क्या ये मेरा सत्य परिचय है? मुझे कोई पूछता है आप कौन हो, मैं कहूंगा कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो मेरा जवाब ठीक है? वास्तव में मैंने बताया कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा धंधा क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, लेकिन मैं कौन हूं तो नहीं बताया। तो लोगों को जब अक्सर करके पूछा जाता है जो उत्तर मिलता है व्हाट दे आर डूइंग बट व्हाट दे आर बीइंग वो नहीं बताते हैं कोई। क्या वास्तव में जो ये आंखों के सामने जो देखते हैं हड्डी मांस का एक पुतला है, ये शरीर क्या ये फिजिकल बीइंग हम हैं? नहीं नहीं, क्योंकि जो फिजिकल बीइंग आप देख रहे हो ये बॉडी इज जस्ट ए पार्ट वी विजुअलाइज थ्रू आवर ग्रॉस आइज, हमारे आंखों के द्वारा जो पार्ट हम देख रहे हैं चर्म चक्षु से, यही तो ये शरीर है। परंतु व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कभी एक्सरे लो तो पता चलेगा ये हमारा शरीर कैसा है, कैसा है एक्सरे में, कैसा दिखता है, कितना भी सुंदर क्यों ना हो कोई, इसकी रियलिटी क्या है? इसकी रियलिटी वास्तव में यही है कि हम सभी एक एक हड्डी और मांस का एक पुतला ही है, इस शरीर में और कुछ नहीं है। कभी ऑपरेशन थिएटर में आइए, मैं दिखाऊंगा इस शरीर के अंदर क्या है, अंदर कितने कफ मल मूत्र पित्त कफ रक्त क्या क्या नहीं है, सिर्फ बाहर से एक बहुत सुंदर एक चमड़ी ही ढकी हुई है, लेकिन अंदर बिल्कुल एकदम अनेक प्रकार की चीजें जो है वो दिखाई नहीं देती है। तो शरीर एक हड्डी मांस का ही पुतला ही है और हम सभी को ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। वास्तव में ह्यूमन बीइंग शब्द दो शब्द से आया है, एक है ह्यूमस, ह्यूमस माना सॉयल मिट्टी, और बीइंग माना सोल आत्मा। आप देखिए अच्छी तरह से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए चित्र को, इसमें जब एक आत्मा प्रवेश कराती है, देखिए आत्मा एक प्रवेश कर गई ये हड्डी मांस का पुतला में, जब आत्मा प्रवेश कर जाती है हम सभी ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। जब तक ये आत्मा शरीर के अंदर नहीं है इस शरीर को मुर्दा कहा जाता है। कोई मर जाने के बाद आत्मा जब निकल जाती है उसको कहते हैं अर्थी, इसके अर्थी को जाओ जला दो कहेंगे। अर्थी शब्द का अर्थ क्या है? न रथी अर्थी, जिसके अंदर रथी नहीं है, ये शरीर एक रथ है इसमें आत्मा रथी है, जब वो रथी निकल जाती है उसको अर्थी कहते हैं। तो ये शरीर वास्तव में एक साधन है, परंतु ये शरीर के अंदर एक एक चेतना शक्ति हम हैं, हम एक एक आत्मा हैं। और वास्तव में आज वैज्ञानिक प्रमाण करके दिखाते हैं, अनेक प्रकार के प्रमाण भी हो चुका है, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस, कई लोग ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि अभी मैं मर गया हूं, फिर कुछ समय के बाद जिंदा हो जाते हैं, फिर बताते हैं कैसे वो मर गए थे, कैसे फिर इस शरीर के अंदर आए, फिर कैसे अनुभव हुआ, ऐसे कई ऐसा भी एक्सपीरियंस बताते हैं। कई ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होते समय आत्मा बाहर से ऊपर से जाके शरीर से डिटेच होके ऊपर देख के फिर ऑपरेशन के बाद बताती है कि आप मेरा शरीर को ऐसे ऐसे ऑपरेशन कर रहे थे, ये बातें कर रहे थे। तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इससे भी सिद्ध होता है कि हम सब वास्तव में एक एक आत्मा है, ना कि शरीर है। शरीर तो एक मैनिफेस्टेशन का साधन है, परंतु ये शरीर के अंदर एक चेतना शक्ति है जो सारा दिन में मेरा मेरा जो हम करते रहते हैं, वास्तव में ये आत्मा ही कहती है। जब तक ये आत्मा है ये शरीर द्वारा हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आत्मा जब निकल जाती है यही आंखें यही हाथ यही पांव कुछ भी काम नहीं करते हैं, ये शरीर को मुर्दा कहलाता है। तो देखिए हम सभी ये संसार जो देख रहे हैं, इस विश्व को एक नाटक कहा गया है, ये विश्व रंगमंच पर अनेक नाम रूप वाले शरीर रूपी वस्त्र धारण कर हम एक्टिंग कर रहे हैं, और ये शरीर मानो एक एक वस्त्र है, हम इसको परिधान करते हैं। जैसे कोई ड्रेस किसी का फट जाता है तो चेंज करके फिर एक नया ड्रेस पहन लेता है, इसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर, दूसरे शरीर छोड़ तीसरे शरीर में आत्मा इस शरीर को बदलती रहती है। तो इसलिए हम सभी वास्तव में एक एक अभिनेता हैं, ये शरीर हमारा एक वस्त्र है। देखो आत्मा उड़ के कैसे जा रही है, दूसरे एक मां के पेट के गर्भ में प्रवेश कर गई। हमारे मां के पेट में जब हमारे शरीर पूर्णांग अवस्था पांचवा महीना में जब शरीर पूर्णांग तैयार हो जाता है उसमें आत्मा प्रवेश करती है, और जब हम पैदा होते हैं वास्तव में वो जन्म शरीर का हुआ, क्योंकि आत्मा एक शक्ति है और ये शक्ति वास्तव में इसको ना कोई बना सकता है ना इसको तोड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है न जायते न म्रियते, जिसका जन्म नहीं है कि मृत्यु नहीं। गीता में लिखा है नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, जिसको शस्त्र द्वारा काट नहीं सकते हो, आग द्वारा जला नहीं सकते हो, पानी द्वारा भिगा नहीं सकते हो, हवा से सुखा नहीं सकते हो, ऐसी एक शक्ति है। हम विज्ञान में भी पढ़ते हैं कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो आत्मा ऐसी एक अजर अमर अक्षय अविनाशी शक्ति है, और ये सिर्फ एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में, जब ये शरीर पुराना हो जाता है, इसको त्याग करके फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और ये शरीर हम अनेक जन्म बदलते रहते हैं, और ये संसार वास्तव में एक रंगमंच है। इस विश्व नाटक में हम सभी एक एक अभिनेता हैं। तो रियलाइजेशन ऑफ द रियल आई इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। तो वास्तव में हम जो हैं, जैसे हैं, अपने आप को अनुभव करना, उसको ही सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। हम जो हैं जैसे हैं, ये शरीर, जैसे किसी गाड़ी में कोई ड्राइवर बैठा है, और ड्राइवर को जब आप पूछते हो आप कौन हो, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं एक जीप हूं, अम्बेसडर हूं, मारुति हूं, कहेगा कभी? कहेगा। लेकिन हमको जब पूछा जाता है, हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम कौन हैं। ये शरीर का ही परिचय देते रहते हैं, और ये शरीर द्वारा क्या करते रहते हैं वही परिचय देते रहते हैं। लेकिन शरीर तो हम नहीं है, शरीर तो हमारा है। हम वास्तव में एक एक चेतन शक्ति आत्मा हैं। और जब तक आप अपने आप को आत्मा अनुभव नहीं करते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन कभी नहीं आएगा। इसलिए कहावत है, सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। आत्म परिवर्तन वो कैसे होता है? जब आत्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान आप समझेंगे, आत्मज्ञान से आत्मचिंतन चलेगा, आपके मन में विचार चलेगा, चिंतन चलेगा, आत्मचिंतन से आत्म अनुभूति होगी। जब आत्म अनुभूति होगी, फिर आपके जीवन में आत्म संयम आएगा, तो आत्म बल आएगा। जब आत्म बल आएगा तो ही आत्म परिवर्तन आएगा। आज मनुष्य चाहते हुए भी जो नहीं कर पाता है, उसका मूल कारण है कि उसके अंदर शक्ति नहीं है। तो आपके अंदर वो आत्म सशक्तिकरण के लिए पहले सेल्फ रियलाइजेशन करने की आवश्यकता है। तो जब तक आप अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं, आपके अंदर वो आत्म बल जागृत नहीं हो सकता है। तो इसलिए देखिए, खुद को अनुभव करना जरूरी है कि वास्तव में मैं एक आत्मा हूं। नहीं तो देखिए, तो आज एक व्यक्ति अभी अभी बात कर रहा था, बोल रहा था, हंस रहा था, एक सेकंड में जब डेथ हो जाता है, वही आंखें तो है, वही शरीर है, लेकिन सब कुछ चुप हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? जैसे आप देखे होंगे, किसी खिलौने में एक सेल है, वो सेल जब तक है वो खिलौना डांस करता रहता है, आवाज आता रहता है उससे, लेकिन जिस घड़ी सेल को निकल देते हो, वही खिलौना चुप हो जाता है। इसी प्रकार हमारे तन, ये शरीर के अंदर एक आत्मा है। जिस आत्मा जब तक है, तब ये शरीर के द्वारा हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। जिस घड़ी आत्मा चली जाती है, ये शरीर जड़ हो जाता है। जैसे अभी बिजली की शक्ति है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपको पता चल रहा है, आप इलेक्ट्रिसिटी को देख रहे हो, देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी का मैनिफेस्टेशन को देख रहे हो। जो बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, इससे आपको पता है कि बिजली है। जैसे बिजली चली जाती है, एक सेकेंड में क्या होता है, बल्ब वही है लेकिन लाइट नहीं है, पंखा वही है फिर भी वो घूम नहीं रहा है। इसी प्रकार बिजली की शक्ति को आप देख नहीं रहे हो, उसका मैनिफेस्टेशन को देख रहे हो। इसी प्रकार हमारे तन में जब तक आत्मा बैठी है अंदर, इस शरीर के द्वारा मैनिफेस्ट करती रहती है। हम बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, जिस घड़ी आत्मा निकल जाती है शरीर से, ये शरीर जड़ हो जाता है, मुर्दा कहलाता है। तो सारा मदार, सारा इंपोर्टेंस किसका है, किसका है? और हम कौन है? वास्तव में हम एक एक आत्मा है। कोई डाउट है किसी को? है डाउट किसी को कि हम आत्मा नहीं है? क्योंकि जो भौतिकवादी हैं, कई लोग सोचते हैं कि ब्रेन ही सब कुछ है, परंतु नहीं। ब्रेन तो वास्तव में एक कंप्यूटर जैसा है, ब्रेन को चलाने वाला भी कोई व्यक्ति चाहिए। तो देखिए, हम सभी के अंदर एक एक आत्मा है और ये आत्मा हमारी यहां रहती है भ्रुकुटी के बीच में। इसलिए कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, गरीबानो साहिबा लंगदा प्यारा, सिख धर्म में कहते हैं। कोई मर जाता है तो कहते हैं द लाइट हैज गन आउट। कई लोग तो कहते हैं वो ऑफ हो गया, जैसे लाइट ऑन होता है ऑफ होता है, ऐसे कोई मर जाने के बाद क्या कहते हैं, वो फलाना ऑफ हो गया, तो लाइट बुझ गई, चली गई। तो हम सभी वास्तव में एक एक आत्मा है, लेकिन प्रश्न उठता है क्या पशु पंछी जानवरों में आत्मा है? है आत्मा? है? कोई जवाब नहीं दे रहे। सभी सुन रहे ना? सुन रहे ना सभी? किसको नींद तो नहीं आ रही सवेरे सवेरे? देखिए, पशु पंछी जीव जंतु में भी आत्मा है, क्योंकि उनके अंदर भी वो आत्मा एक चेतना शक्ति है। आत्मा में सोचने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति, अच्छा है बुरा है, सुख दुख अनुभव करने की शक्ति, ये सब शक्तियां उसके अंदर है। तो पशु पंछी जानवरों में भी आत्मा होती है, लेकिन मनुष्य की आत्मा सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, पशु पंछी की आत्मा थोड़ी निकृष्ट वैरायटी की है। और हमारी आत्मा में बहुत सारी विशेषताएं हैं जो पशु पंछियों के अंदर नहीं है, लेकिन है आत्मा। लेकिन एक पेड़ पौधों में आत्मा है? पेड़ पौधों में आत्मा है? नहीं है। उनको भी तो सजीव कहा जाता है। विज्ञान में कहते हैं इस सारी दुनिया में जितने भी चीजें हैं, लिविंग नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव, ऐसे डिवाइड किया जाता है। और जो सजीव है उसको भी प्लांट्स और एनिमल्स, ऐसे दो भाग में बांटा गया है। तो पेड़ पौधे में आत्मा कैसे नहीं है? पेड़ पौधों को फिर सजीव क्यों कहा गया है? वास्तव में उनके अंदर एक जैविक शक्ति है, एक जीवनी शक्ति है, जैविक शक्ति है, जो सोलर एनर्जी डिराइव करते हैं वो, और उनका भी ग्रोथ मेटाबॉलिज्म आदि होता है, रिप्रोडक्शन होता है। परंतु उनके अंदर एक कॉन्शस एनर्जी, एक चेतना शक्ति जिसे कहते हैं आत्मा, वो नहीं है। इसलिए कोई पेड़ पौधा मरते समय आप देखना, एक पशु पंछी जानवर कोई भी मरता है, एक सेकंड में मर जाता है। लेकिन एक पेड़ को मरते हुए देखे हैं कभी? एक सेकंड में मरता है कोई पेड़? धीरे धीरे सूखते 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 कितना दिन लगता है? तो उसके अंदर आत्मा होती है और निकल जाती, जैसे बिजली चली गई तो फट से पता चलता है। ऐसे अगर हमारे पेड़ पौधे के अंदर आत्मा होते और आत्मा निकल जाती तो एक सेकंड में पेड़ पौधे भी मर जाते, ऐसा नहीं होता है। तो उसके अंदर बायोलॉजिकल एनर्जी है, जैविक शक्ति है। तो देखिए, पेड़ पौधे के अंदर आत्मा नहीं है, लेकिन पशु पंछी जानवरों के अंदर आत्मा है। और वो पशु पंछी के जानवरों की आत्मा मनुष्य की आत्मा से भिन्न है। उनका जन्म कैसे मनुष्य के रूप में, वो हम ट्रांसमाइग्रेट नहीं होते हैं कि, या हमारी आत्मा भी कोई पशु पंछी जोनी में नहीं जाती है, वो डिटेल वास्तव में आपको बहने और अच्छी रीति से समझाएंगे। हमारे सेंटर में आएंगे तो हमारे टीचर बहने बहुत अच्छी रीति से आपको डिटेल क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि समय कम है, आपको डायबिटीज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए। लेकिन मैं सार सार रूप में आपको समझा रहा हूं कि आप वास्तव में एक एक आत्मा है, और ये आत्मा वास्तव में हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आप देख रहे हैं, आंखों द्वारा हम देखते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं, मुख द्वारा बोलते हैं, ये जो फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं, इसके द्वारा आत्मा मैनिफेस्ट करती है। इसलिए कहते हैं आंखें तो झरोखे हैं, आंख वास्तव में देखती नहीं है। आंख हमारे शरीर के अंदर जो मिड ब्रेन में आत्मा रहती है, वो आत्मा वास्तव में आंखों द्वारा देख रही है। तो ये कर्मेंद्रियां सेंस ऑर्गन्स मैनिफेस्टेशन के लिए साधन है, परंतु हम सभी आत्मा हैं। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? अच्छा, ये क्या चीज है? क्या चीज है? सिम कार्ड। और ये क्या चीज है? मेमोरी कार्ड है। तो हर एक के पास मोबाइल होगा, मोबाइल में एक सिम कार्ड है, एक मेमोरी कार्ड है, दो होते हैं। इसी प्रकार हमारा जो शरीर आप देख रहे हो, ये शरीर भी एक मोबाइल जैसा ही है। और इसमें जब एक आत्मा प्रवेश कर जाती है, ये आत्मा में वास्तव में आत्मा को एक सिम के साथ हम भेंट कर सकते हैं, SIM, सिम जो कहते हैं, S फॉर संस्कार, I फॉर इंटेलेक्ट, M फॉर माइंड। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन चीजें हमारी आत्मा में होती है। मन वास्तव में कोई भिन्न चीज नहीं है, आत्मा की सोचने की शक्ति को मन कहा जाता है। आत्मा जब सोचती है उसी वक्त उसको ही मन कह दिया गया है, बाकी मन कोई भिन्न चीज नहीं है। आत्मा जब डिसीजन लेती है कि राइट है, रॉन्ग है, पाप है, पुण्य है, उसी वक्त उसको बुद्धि कह देते हैं। तो इंटेलेक्ट कोई भिन्न चीज नहीं है। इस प्रकार हम जो कर्म करते हैं, कर्म करते 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 जो आदत बन जाती है, नेचर, हैबिट हो जाता है, इसको ही हम संस्कार कहते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन वास्तव में मैनिफेस्टेशन है आत्मा के। और जिसके अंदर एक मन है, बुद्धि है, संस्कार है, तो समझ लेना चाहिए उसके अंदर एक आत्मा है। और हमारा जो ब्रेन है, वास्तव में ये एक मेमोरी कार्ड है। जब हम मर जाते हैं, हमारे सारा इरेज हो जाता है, शरीर को जला दिया जाता है, तो क्या होता है, सारी मेमोरी खत्म हो जाती है। ब्रेन को जला दिया जाता है तो मेमोरी इरेज हो जाता है। तो हम सभी वास्तव में एक एक आत्मा है, मन, बुद्धि और संस्कार, ये इनके द्वारा हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये वास्तव में ये तीनों का बड़ा गहरा संबंध है। मन में हमारा सोच चलता है, फिर बुद्धि द्वारा हम निर्णय करते हैं, फिर जो कर्म करते हैं, कर्म करते करते वो फिर आदत बन जाता है। ये आपस में बड़ा रिलेशन है। पहले मन में हमारा एक विचार आता है, कभी कभी हम बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हुए हम कर लेते हैं, फिर बाद में हमको पश्चाताप करना पड़ता है। लेकिन जिसकी बुद्धि अच्छी है, वो बुद्धि द्वारा निर्णय करके करता है, तो कभी भी वो धोखा नहीं खाता है, हमेशा राइट डिसीजन होता है, अच्छा कर्म करता है। और हम वास्तव में भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे एक बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, क्योंकि जिसकी बुद्धि जितनी अच्छी है, उसका डिसीजन अच्छा है, उसका कर्म अच्छा है, तो उसका जीवन भी अच्छा हो जाता है। हम कभी नहीं कहते हैं हे प्रभु मुझे सच्चा मन दो, हम कहते हैं हे प्रभु मुझे एक सद्बुद्धि दो। और बुद्धि जब हम ईश्वरीय संग करते हैं, जैसा संग ऐसा रंग लगता है, हमारी बुद्धि अच्छी हो जाती है। हम जैसा अन्न खाते हैं उसी अनुसार हमारे मन बुद्धि होते हैं। तो हमारे सात्विक भोजन, श्रेष्ठ संग से हमारी बुद्धि अच्छी हो जाती है, हमारा डिसीजन पावर अच्छा हो जाता है। और ये मन वास्तव में एक घोड़ा जैसा है, चंचल घोड़ा जैसा है ये मन। वास्तव में सारे दिन में, आपको पता है कि सारे दिन में हम लगभग 50,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं, 50,000। और वो चार प्रकार के थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड अननेसेसरी। कई सोच तो हमारी जरूरी है, अभी मुझे जाना है, अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है, अभी मुझे क्लास में आना है, अभी मुझे कपड़े धोना है, ये सब नेसेसरी थॉट्स है, इसके बिना आप रह नहीं सकते हो, जरूरी है। लेकिन कई बातें अननेसेसरी है, जैसे आप यहां बैठे हो, आप घर की बातें सोच रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं सुन नहीं रहे हो, और क्या क्या सोच रहे हो, क्या ये अननेसेसरी नहीं है? इसी प्रकार कई सोच हमारे पॉजिटिव होते हैं, जो अपने लिए भला, दूसरों के लिए भी भला, कई तो नेगेटिव होते हैं जो दोनों का नुकसान करते हैं। जब हम पॉजिटिव सोच सोचते हैं, हमारे आत्मा के अंदर शक्ति जमा होती है, वी कंजर्व एनर्जी। परंतु जब हम नेसेसरी टू मच सोचते हैं, अननेसेसरी सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, वी ड्रेन आउट आवर एनर्जी, हमारी सारी शक्तियां नष्ट हो जाती है। इसलिए हम आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा आत्मा को सशक्तिकरण करने के लिए मन में सदा कैसे ही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प चलाएं, वो बताया जाता है। इसी प्रकार बुद्धि भी हमारी एक तराजू जैसी है, उसमें रीजनिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, या अंडरस्टैंडिंग, स्पेकुलेटिंग, या विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन आदि आदि, रियलाइजेशन आदि आदि शक्ति उसके अंदर है। बुद्धि द्वारा हम डिसीजन लेते हैं, अच्छा बुरा निर्णय करते हैं, बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा विजुअलाइज करते हैं, जो आगे मेडिटेशन में आपको बताऊंगा। इस प्रकार संस्कार अर्थात जो कर्म करते करते हमारी आदत बन जाते हैं उसको हम संस्कार कहते हैं। जैसे किसी अब डिस्क में आप रिकॉर्ड कर दिया, किसी कैसेट में आप रिकॉर्ड कर दिया, तो उसमें जैसे रिकॉर्ड हो जाता है, हम जो भी करते हैं हमारे आत्मा में वो रिकॉर्ड हो जाता है और उसी आदत के अनुसार फिर हम वशीभूत होकर कर्म करते हैं। यहां राजयोग मेडिटेशन द्वारा हमारी पुरानी गंदी आदतें जो मिटती नहीं है उससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे वो विधि आपको बताई जाएगी, जो डायबिटीज में बहुत मदद करेगी आपको। और संस्कार कईयों के बुरे संस्कार होते हैं तो उसको पापात्मा कहा जाता है, किसी को तो धर्मात्मा कहा जाता है, किसी को महात्मा कहा जाता है, किसी को देवात्मा कहा जाता है। तो हमारे संस्कार के आधार से हम पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा आदि आदि सब नामकरण करते हैं। कभी किसी को पाप शरीर, पुण्य शरीर, धर्म शरीर नहीं कहा जाता है, कहते हैं ऐसे नहीं कहते ना। तो हमारे संस्कार के आधार से ये सब नामकरण किया गया है। और कई संस्कार हम तो हमारे मां बाप से हमें प्राप्त होते हैं। आप देखे होंगे कई ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर करके सभी बच्चे अपने मां बाप को डीटो कॉपी करते हैं, संपूर्ण फॉलो करते हैं मां बाप को। आप सोचते होंगे कि ये बच्चे हैं क्या समझते होंगे, परंतु नहीं, बिल्कुल बच्चे तो कॉपी करने में सबसे एकदम होशियार होते हैं। मैं आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूं। एक बार मैं हमारे हॉस्पिटल में एक आई सर्जन है उनके घर में मैं गया था। इतना छोटा सा बच्चा, हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, वो ड्राइंग रूम से बाहर जाके गेट के पास जाके खड़े होके, 2-3 साल का बच्चा होगा, और रास्ते में कोई भी जा रहे हैं कहता है आओ 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 चाय पानी पी के जाओ, आओ 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 चाय पानी पी के जाओ। वो बच्चा कैसे, किसने सिखाया उसको, किसने ट्रेनिंग दिया? देखता है उनके मां बाप घर में कोई भी आते हैं, गेस्ट आते हैं तो ऐसे बुलाते हैं, आदर से चाय दे रहे हैं, सीखा है, बुला रहा है। कभी कभी ऐसे बच्चों को भी आप देखे होंगे कि घर में कोई नहीं होंगे, कोई भिखारी आया, बाबूजी कुछ 2-4 रुपया दे दो, नहीं नहीं कुछ नहीं है, जाओ 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 कुछ नहीं, भागो भागो। इतना छोटा बच्चा, किसने ट्रेनिंग दिया, किसने ट्रेनिंग दिया? देखता है मां बाप ऐसा करते हैं। तो बच्चे मां बाप से ही संस्कार इनहेरिट करते हैं। इस प्रकार कई संस्कार हमारे पूर्व जन्म के होते हैं। बिना ट्रेनिंग दिए भी छोटे बच्चे कोई डांस बहुत सुंदर कर रहा है, कोई गीत बहुत सुंदर गा रहा है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छा कर रहा है, आपको भी ट्रेनिंग उसको दिए नहीं है, वो पूर्व जन्म का। कई संस्कार गॉड गिफ्टेड होते हैं, कई संस्कार हमारे संग हमारे साथियों से भी हमें वो मिलते हैं। लेकिन कई संस्कार हमें बहुत मोटिवेटिंग पर्सनालिटीज दुनिया में होते हैं, ऐसे महान व्यक्तियों के संपर्क में आते ही जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है। जैसे रामकृष्ण के संग में जब नरेन एक साधारण लड़का था, संग में आया क्या बन गया, स्वामी विवेकानंद बन गया। तो ब्रह्मा बाबा आज हमारे सन्मुख एक आदर्श हैं, जो आज लाखों संख्या में सारे विश्व में अनगिनत नर नारी आज उनका जीवन को संपूर्ण परिवर्तन कर चुके हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है मेरी भाई और बहनों, जो नियमित राजयोग नहीं कर रहे हैं या ऐसे ही एक साधारण रीति से कर रहे हैं, यहां आए हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, डायबिटीज से संपूर्ण छुटकारा पाने के लिए, मेरा पूर्ण विश्वास है आपके अंदर एक आत्म जागृति आ जाए, आप अच्छी तरह से अपने आप को रियलाइज कर लें, तो ये बीमारी तो क्या, जो बीमारी बिल्कुल असाध्य है, जो कोई कभी भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे बीमारियों से भी सदाकाल के लिए आप छुटकारा पा सकते हो। डायबिटीज तो बहुत बाएं हाथ का खेल है। तो देखिए, आपको राजयोग का गहन अनुभव करने के लिए भी सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा और ईश्वरीय संघ में आके अपने जीवन को परिवर्तन करना पड़ेगा, अपना संस्कार को बदलना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, इस बीमारी के दुष्प्रभाव से आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये सब बातें सुना रहा हूं। देखिए, अब प्रश्न उठता है कि आत्मा आई कहां से। वास्तव में ये जो संसार हम रह रहे हैं, ये तो बहुत एक छोटा सा छोटी सी दुनिया है, इसको हम साकार मनुष्य लोग कहते हैं। सूरज चांद सितारों से भी बहुत ऊपर चले जाएंगे और एक दुनिया है सूक्ष्म लोक, उससे भी और ऊपर चले जाएंगे और एक दुनिया है जिसका नाम ब्रह्मलोक है, जहां तक विज्ञान आज तक नहीं पहुंच पाया है। जैसे आकाश नीला कलर का देख रहे हो, ऐसे सुनहरी लाल कलर का एक तत्व है जिसको अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व कहते हैं, और वहां एक दुनिया है जिसको हम कहते हैं शांति धाम, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, निर्वाण धाम, परम धाम। वहां हम सभी आत्माएं रहती हैं बिंदु बिंदु रूप में, छोटे छोटे स्टार के रूप में, और वहां से ये संसार में हम आते हैं अभिनय करने के लिए। इसलिए कहते हैं संसार ना तेरा है ना मेरा है, ये तो चिड़िया रेन बसेरा है, ये तो संसार मुसाफिर खाना है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। तो हम सभी वास्तव में उस सोल वर्ल्ड में रहते हैं, और हम सभी के तीन अवस्थाएं होती है। आत्मा जब ऊपर होती है अपने घर में, मुक्ति धाम में, परम धाम में, उस समय आत्मा की मुक्ति अवस्था हम कहते हैं, मुक्ति अवस्था। उस समय ना कर्म है, ना फल है, ना सुख है, ना दुख है, ना संकल्प है, ना विकल्प है। वहां सुप्त अवस्था में, एक डरमांट स्टेज में आप सोए रहते हैं। लेकिन जब पहली बार हम सभी दुनिया में उतरते हैं, यहां जीवन मुक्ति स्थिति की अनुभूति करते हैं। जीवन मुक्ति, जीवन होते हुए भी मुक्त, कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं, बंधन नहीं, कुछ नहीं। फिर जन्म मरण चक्र में आते 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 एक समय आ जाता है जब हम सभी जीवन बंध हो जाते हैं, अर्थात ये जीवन बंधन में, अनेक प्रकार के बंधनों में हम बंध जाते हैं। बंधन चाहे कोई सोने का जंजीर में भी किसी को बांध दिया जाए, बंधन तो बंधन ही है। और बंधन में होता है दुख। जब हम निर्बंधन है, जीवन मुक्ति अवस्था में होते हैं, सुखी होते हैं, जब बंधन में आते हैं दुखी हो जाते हैं। और जब सभी दुखी हो जाते हैं, हम भगवान को पुकारते हैं, हे प्रभु हमें छुड़ाओ, मुक्ति दिलाओ, परमात्मा के हम सभी का मुक्ति दिला देते हैं। तो आज संसार में सभी मनुष्य आत्माएं जीवन बंधन में फंसे हुए हैं, हम सभी भगवान को पुकार रहे हैं, और हमारी पुकार सुनकर वो पिता परमात्मा आ चुके हैं संसार में और हमें मुक्ति दिला रहे हैं। कहते हैं मेरे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग में भेजा था जीवन मुक्ति देकर, तुम कितना सुंदर जीवन जीते थे, लेकिन अब क्या हो गया देखो तुम्हारा। अब ये आत्मा जो मैं आपको बता रहा था, ये आत्मा में वास्तव में जैसे तीन अवस्थाएं बताया, मुक्ति, जीवन मुक्ति और जीवन बंधन, ये तीनों अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था अच्छी है, कौन सी अवस्था अच्छी है? जीवन मुक्ति। कई मुक्ति चाहते हैं परंतु मुक्ति तो एक सुप्त अवस्था है, जैसे कि सोए रहे हो, उसमें आनंद क्या है? जीवन में होते हुए भी मुक्ति की अनुभूति करना और सदा सुखी अनुभव करना, वो वास्तव में उसमें ही विशेषता है। इसलिए जीवन मुक्ति सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार आत्मा के तीन प्रकार के अवस्थाओं के अनुसार भी तीन प्रकार के गुण कहेंगे। आत्मा के निजी गुण कुछ होते हैं, उसको कहते हैं अनादि गुण। आत्मा के निजी गुण, अनादि गुण, वो कितने हैं? सात हैं। इस चित्र में आप देखते होंगे, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। इस सातों गुण में आत्मा जब भरपूर हो जाती है, उस समय आत्मा की सतोगुणी अवस्था कहते हैं। आत्मा सतोगुणी अवस्था में जब होती है, वास्तव में उस समय ना दुख, ना अशांति, ना रोग, ना शोक, ना पीड़ा। हम सभी जब प्योर स्टेज में होते हैं, आत्मा की सतोगुणी अवस्था होती है। इसी प्रकार आत्मा के कुछ अनादि गुण के साथ साथ आदि गुण भी होते हैं। अर्थात जब संसार के आदिकाल में हम अवतरित होते हैं, ये संसार में आते हैं सत्ययुग त्रेतायुग में, उस समय जो हमारे अंदर गुण होते हैं, उसको कहते हैं डिवाइन वर्च्यूज व आदि गुण, देवताई गुण। वो कम से कम कितने हैं? कितने हैं? 36 है। आप यहां जाएंगे, उधर एक लंबी लिस्ट है, 36 दिव्य गुणों की लिस्ट है, आप पढ़ना। हमारे अंदर सात अनादि गुण हैं, परंतु कम से कम 36 दैवी गुण है, डिवाइन वर्च्यूज है। वो कौन से हैं जानते हैं? कौन से हैं कोई बता सकते हैं? बताइए, 36 दैवी गुण बताओ माता जी, बोलो बोलो, 36 दैवी गुण बताना पड़ेगा। वास्तव में 36 तो मिनिमम है, हमारे अंदर बहुत सारे गुण थे। आप वो लिस्ट से आगे पढ़ना, अंतर्मुखता, अनुशासन, अथक, आज्ञाकारी, आत्मविश्वास, ईमानदारी, उदारता, गंभीरता, गुणग्राहकता, धैर्यता, न्यारापन, नम्रता, निश्चिंतता, निर्भयता, निरपेक्षता, परोपकार, पवित्रता, स्फूर्ति, विवेकशील, रहमदिल, सुभावना, शालीनता, सत्यता, सत्कार, संतुष्टता, सहनशीलता, सहयोग, समर्पण, स्वच्छता, सादगी, साहस, हर्षितमुखता, हल्कापन, क्षमा भाव, कितने सारे गुण है। आप अगर सीरियली अगर अल्फाबेटिकली लिखेंगे आप देखना, इतने सारे गुण हमारे अंदर होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ये गुण जब हमारे अंदर पूरा भरपूर होते हैं तब हम देवता कहलाते हैं, तब जीवन में कोई भी प्रकार के अवगुण नहीं होते हैं। जैसे संपूर्ण प्रकाश है तो कहीं भी अंधकार नहीं होता है। तो हमारे जीवन में जब संपूर्ण हम सभी गुणों से भरपूर होते हैं तब हम देवता कहलाते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं। इस प्रकार सोल और कला संपूर्ण होते हैं तो उस समय हमारी देवता स्थिति होती है। लेकिन हमारे अंदर जब ये गुण हम धीरे धीरे खो देते हैं हमारे अंदर अवगुण आ जाते हैं। वो अवगुण वास्तव में हमारे जब जीवन में आ जाते हैं हम दुखी हो जाते हैं। वास्तव में ये रावण जो दिखाते हैं ये कौन है? हमारे अंदर जो बुराइयां है, अवगुण है, उसका प्रतीक है, सिंबल है। जैसे बताया कि प्रकाश अगर पूर्ण है तो अंधकार का लेस मात्र भी आप कहीं देख नहीं सकेंगे। जैसे प्रकाश धीरे 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 रोशनी कम हो जाती है, अंधकार दिखाई देता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में हम जब देवता थे, हमारे अंदर हम सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण थे, हमारे अंदर कोई कमी नहीं थी, हमारे अंदर एक भी अवगुण नहीं था। लेकिन धीरे 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 जैसे ये गुणों को हम खोने बैठे तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य, भय, वैर, विरोध, ये भी इसकी लंबी लिस्ट है, ये सब आ गए, जिसके कारण आज मनुष्य हम सभी दुखी हैं। तो वास्तव में हमारे अंदर गुस्सा नहीं था, गुस्सा हमारा निजी स्वभाव नहीं है। आज गुस्सा करने के कारण ही कितना नुकसान हो रहा है ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। जो गुस्सा करता है उसको ही हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर एकदम शूट कर जाता है। तो गुस्सा से इतने सारे हमारे शरीर में इतने रिएक्शंस होता है, इतने केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो गुस्सा हमारे अंदर नहीं था, हमारा निजी स्वभाव नहीं है। कहां से आया गुस्सा? कौन सा गुण को खो दिए? हमारे अंदर जब सहनशीलता की कमी हो जाती है क्रोध आ जाता है। कोई व्यक्ति 100% सहनशील है तो गुस्सा कभी नहीं करेगा। 10% सहनशीलता की कमी हो जाती है तो चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, मन ही मन इरिटेशन होता रहेगा, ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, इसको भी मैं कभी देख लूंगा। 20% कम हो जाता है तो गाली गुलज शुरू कर देता है। 50% कम हो गया तो थप्पड़ भी लगा देगा। 100% कम हो गया तो सीधा शूट कर देगा, मर्डर कर देगा। इसी प्रकार हमारे अंदर लोभ नहीं था, कहां से आया? जब हम संतुष्टता को खो दिए तो लोभ आ गया। कोई व्यक्ति 100% संतुष्ट है तो कभी वो कहीं से छिना छपटी नहीं करेगा, रिश्वत नहीं लेगा। आज दुनिया में जो भी अवगुण आप मनुष्य के अंदर देख रहे हैं इसका मूल कारण है कि हम अपने गुणों को खो दिए, जिसके कारण अवगुण के हम एक एक मॉडल बन गए और इसको सिंबल करके चित्रकारों ने ऐसे रावण के रूप में दिखाया। हमारे अंदर जो मुख्य 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो स्त्री में भी है पुरुष में भी है, इसको ऐसे 10 सिर के रूप में दिखाया है। और रावण मरा कैसे मरा? जब राम जी एक तीर मारते थे उसका एक गर्दन काट देते थे, फिर हा 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 करके फिर जुट जाता था, फिर दूसरा सिर काट देते थे, फिर वो उड़ के आ जाता था, फिर जुट जाता था। क्या मतलब? आज अगर आप कहेंगे कि मैं आज से गुस्सा छोड़ के जा रहा हूं यहां से, बिल्कुल इम्पॉसिबल, फिर से आ जाएगा। आप कहेंगे आज से लोभ छोड़ रहा हूं, बिल्कुल नहीं, फिर से आ जाएगा। लेकिन रावण मरा कैसे? जब रावण के नाभि देश में राम जी ब्रह्मास्त्र प्रयोग किए तब मरा। कहने का मतलब है ये जो हमारे विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो अवगुण है, इसका जड़ है, उसका फाउंडेशन है, उसका रूट है हमारा बॉडी कॉन्शसनेस। जब तक हम अपने आप को बॉडी समझते हैं ये अवगुणों से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने हमें कहा है, मेरे बच्चे तुम कौन हो? आत्मा है। तो आत्मा समझने से ही हमारे अंदर ये दैवी गुणों के संचार होंगे। जब शरीर समझते हैं तो ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। तो इसलिए हाउ टू इनकल्केट दिस वर्च्यूज, ये गुण कैसे आएंगे, एक सिंपल लॉजिक है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, आप जैसे सोचेंगे ऐसे बनेंगे। आदमी जैसा सोचता है ऐसा ही हो जाता है। आप देखिए यहां बैठे बैठे जीवन की बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको याद आ रही है, आपका चेहरा देखने से एकदम खिला हुआ नजर आएगा। अगर यहां बैठ के भी बहुत महफिल चल रही है, बहुत सब ये बहुत एकदम आनंद ले रहे हैं, बहुत एकदम मौज कर रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, और आपको बहुत कई जीवन की दुखद घटनाएं याद आ रही है, या टेलीफोन में अचानक एक मैसेज आ गया कि सम नियर एंड डियर का डेथ हो गया, क्या होगा, क्या होगा, सब कुछ बेकार लगेगा। तो आदमी जैसा सोचता है ऐसा ही वो अनुभव करता है। इसलिए हमारे सोच को बदलने की बात है, और इसलिए जीवन में वास्तव में फूड फॉर लाइफ हमारे सोच को कहा जाता है, हमारे थॉट्स को कहा जाता है। जैसे हमारे स्वास्थ्य, अच्छा भोजन खाने से ही हमारा तन दुरुस्त होता है, हमारी आत्मा, हमारा मन को अगर दुरुस्त करना चाहिए, मन दुरुस्त करना चाहते हो तो मन में अच्छे विचार लाइए। इसलिए माइंड योर थॉट्स बिकॉज दे सून बिकम योर वर्ड्स। हमारे सोच को अगर हम सावधानी में इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो कभी मुख से कुछ भी शब्द निकल सकता है, और हम अपने बोल को अगर नियंत्रण करेंगे तो हमारा कर्म भी ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। तो हमारे बोल और कर्म, इसका फाउंडेशन बीज क्या है, क्या है, हमारी सोच है। और महान व्यक्ति वो है जिसके संकल्प महान है, महान व्यक्ति वो है जिसके बोल महान है, उसको ही महात्मा कहा जाता है। महात्मा शब्द का अर्थ नहीं कि लंबा चौड़ा पूरा 8 फुट 10 फुट का कोई ज्यादा लंबा चौड़ा होगा। तो थॉट्स आर प्रेशियस, डोंट वेस्ट देम। हमारी सोच वास्तव में बहुत मूल्यवान है, इसको हमें वेस्ट होने नहीं देना चाहिए। और यहां हमारी बहनें आपको बताएंगे कि हमारे थॉट्स को कैसे हम चैनलाइज करें, कैसे पॉजिटिव